Brother Koshi Matthew has been telling me to visit here often.
Brother Koshi Matthew, बार बार मुझे यहाँ आने के लिए बताते हैं.
Often when I come to Bombay, the Sundays are few. This Sunday I was free. Like yesterday, brother insisted that I come here today. It's a great joy to be with you and to minister God's word. Please turn with me to Matthew chapter 21.
मत्ती 21वां अध्याय.
And we'll read from verse 12 to verse 16.
12 से 16 तक हम पढ़ेंगे. यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सराफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा परंतु तुम उसे डाकुओं की खोह बनाते हो. तब अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए और उसने उन्हें चंगा किया. परंतु जब प्रधान याजकों और शास्त्रियों ने इन अद्भुत कामों को जो उसने किए और लड़कों को मंदिर में दाऊद के संतान को होशाना पुकारते हुए देखा तो वे क्रोधित हुए और उससे कहने लगे, क्या तू तो सुनता है कि ये क्या कहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, हाँ, क्या तुमने यह कभी नहीं पढ़ा? बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने अपार स्तुति कराई. तब वह उन्हें छोड़कर ओके.
Here we learn five things about the house of God.
यह हम मंदिर जो परमेश्वर के मंदिर के बारे में बातें देखते हैं क्या किया.
First of all, we read the house of God belongs to Him. The church belongs to Him.
जो परमेश्वर का मंदिर है, कलीसिया है, वो किसकी है? वो प्रभु की है.
We read in verse 13, my house.
13 पद में हम पढ़ते हैं, जो कहता है कि मेरा घर.
Secondly, the house of God is a house of prayer.
और दूसरी बात हम देखते हैं कि जो परमेश्वर का मंदिर है वो प्रार्थना का घर है.
And thirdly, it is a holy house.
और तीसरी बात हम देखते हैं कि वो पवित्र घर है.
They made it a den of thieves, but God's house is a holy house.
उन लोगों ने उसको डाकुओं की खो बनाया, लेकिन वो परमेश्वर का घर था, मंदिर था.
And fourthly, the house of God is a place of healing, a house of healing.
और चौथी बात हम देखते हैं कि परमेश्वर का मंदिर या घर वो आरोग्यदान देने का घर होता है.
हाउस ऑफ हीलिंग,
आरोग्यदान प्राप्त होता है उसका.
He's a doctor, so he'll know best. The blind and the lame came to him in the temple and he healed them.
जो अंधे लंगड़े वहां मंदिर में आए वे कैसे उनको चंगाई प्राप्त हो गई प्रभु यीशु के द्वारा.
And the fifth thing in verse 16, the house of God is a house of praise.
15-16 पदों में हम देखते हैं कि परमेश्वर का मंदिर घर ये स्तुति का जगह है.
Children cried in the temple, Hosanna to the Son of David.
वो लड़के कैसे पुकारते थे दाऊद के संतान को होशाना करके.
In the Old Testament, the house of God was a material structure.
पुराने नियम में हम देखते हैं कि परमेश्वर का मंदिर ये जो प्राकृतिक पत्थरों से बनाया गया था.
Even in the Gospels, it was a material structure.
और सुसमाचारों के दरमियान भी वो घर को हम उसी तरह देखते हैं.
But when we come to 1 Peter chapter 2, as our dear brother reminded us, the church is a spiritual house.
लेकिन हम जैसे पत्रस पहले पत्रस के दूसरे अध्याय में देखते हैं, जैसे अभी सुबह भाई ने उसके बारे में बताया कि वो परमेश्वर का मंदिर कैसे आत्मिक मंदिर है, घर है.
And in verse 13, the Lord calls it my house.
13वें पद में लिखा है कि प्रभु कहता है कि वो मेरा घर है.
Turn to Hebrews chapter 3.
इब्रानियों के पत्र 3 अध्याय.
In verse 6,
छठवें पद में हम पढ़ते हैं,
But Christ as a son over his own house, whose house are we?
परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है और उसका घर हम है.
So the Lord Jesus says, upon this rock I will build my church.
प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इस चट्टान के ऊपर मैं मेरा घर बनाऊंगा.
The church,
कलीसिया बनाऊंगा.
The church was purchased by the precious blood of Christ, so it belongs to him.
और ये कलीसिया उसने अपने खून के द्वारा खरीद लिया है, इसलिए उसकी है.
And in John chapter 2, the Lord Jesus says, my father's house.
योना 2 में हम देखते हैं कि मेरे पिता का घर, ऐसा प्रभु यीशु कहता है.
The church originated in the mind and purpose of God.
इसलिए कि कलीसिया की जो शुरुआत है वो उसके बारे में प्रभु परमेश्वर के मन में विचार आया था.
You know why the world was made?
इस दुनिया को उसने क्यों उत्पन्न किया?
So that the world might be the stage in which the church can be displayed.
ताकि वो दुनिया जिसमें वो कलीसिया को प्रकट करेगा.
You see, the church is composed of human beings.
क्योंकि कलीसिया जो है मनुष्यों से बनती है.
So the human beings must have a place to stay.
वो तो मनुष्यों को रहने के लिए ऐसी जगह होनी चाहिए.
That's why he made the world.
और इसीलिए उसने दुनिया को निर्माण किया.
Ephesians chapter 3.
इफिसियों के पत्र तीसरा अध्याय.
We see that in verse 9 and verse 10.
9 और 10वें पदों में हम देखते हैं.
To make all men see what is the fellowship of the mystery, which from the beginning of the world had been hid in God, who created all things by Jesus Christ, to the intent that now unto the principalities and powers in heavenly places might be known by the church the manifold wisdom of God according to the eternal purpose which he purposed in Christ Jesus our Lord. Therefore he made the world.
इसलिए उसने इस दुनिया को बनाया.
Therefore he made man.
इसलिए उसने मनुष्यों को बनाया.
Therefore he made the nation of Israel.
और इसलिए उसने इसराइल को बनाया.
For Christ had to come there and die and rose again and go back to heaven.
ताकि मसीह वहां आए, मनुष्य जाति के लिए मरे और पुनर्जीवित होकर पुनः स्वर्ग में जाए.
And then the church be formed.
और बाद में कलीसिया तैयार हो जाएगी करके.
So it is the father's house.
तो इसलिए वो पिता का घर है.
And then we read in 1 Corinthians chapter 3.
पहले कुरिन्थियों तीसरा अध्याय में हम पढ़ते हैं.
You are the temple of God.
आप परमेश्वर के मंदिर हो.
And the Spirit of God dwells in you.
और परमेश्वर का आत्मा अपने आप में वास करता है.
1 Corinthians 3 and verse 16.
तीसरा अध्याय पहले कुरिन्थियों का 16 पद. क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है.
एंड इन इफिसियंस चैप्टर 2 द चर्च इज अ हैबिटेशन ऑफ गॉड बाय द स्पिरिट.
और इफिसियों के दूसरी पत्री में हम देखते हैं कि कलीसिया में परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा वो वास करता है.
सो द चर्च इज द प्लेस वेयर द ट्रायून गॉड ड्वेल्स.
तो कलीसिया जहां त्रैक परमेश्वर खुद वास करता है.
सो व्हेन वी कम टू द असेंबली वी शुड कम विद द कॉन्शियसनेस वी आर कमिंग टू मीट गॉड.
तो जब भी हम कलीसिया की सभा के लिए आते हैं तभी इसकी पूरी रीति से हमें जान होनी चाहिए कि हम परमेश्वर को मिलने के लिए आते हैं.
व्हेन आई गो टू ब्रदर राजन्स होम आई एम गोइंग टू मीट ब्रदर राजन.
जब भी मैं ब्रदर राजन के घर में जाता हूं तभी उनको मिलने के लिए जाता हूं.
व्हेन वी कम टू द हाउस ऑफ गॉड वी आर कमिंग टू मीट गॉड.
लेकिन परमेश्वर के मंदिर में घर में जब भी हम आते हैं तो उसको मिलने के लिए आते हैं परमेश्वर को.
So we read the psalmist said, I was glad when they said unto me, let us go to the house of God.
इसलिए भजनकर्ता कहता है कि जब भी उन्होंने मुझे कहा कि चलो हम परमेश्वर के घर जाए मंदिर जाए तो मैं कितना खुशी हो गया.
But reverence and godly fear must mark us when we come to the assembly of God.
जब भी हम परमेश्वर के कलीसिया के लिए आते हैं, मीटिंग के सभा के लिए आते हैं, तभी हम हमारे मन में उसी तरह का आदर भाव और परमेश्वर का भय होना चाहिए.
सेकेंडली,
दूसरी बात,
माय हाउस शैल बी कॉल्ड द हाउस ऑफ प्रेयर.
मेरा घर ये प्रार्थना का घर कहलाएगा.
यू सी, द हाउस ऑफ गॉड इज अ प्लेस वेयर we are in touch with the living God.
परमेश्वर का घर ऐसी जगह है कि जब हम परमेश्वर के सतत संपर्क में रहते हैं.
When Jacob went to Bethel,
जब याकूब बैथल में गया,
oh he said, this is the gate of heaven.
उसने कहा कि ये तो स्वर्ग का द्वार है.
Yes, you see, in the church we are linked with heaven.
कलीसिया में हम स्वर्ग के साथ संपर्क में आते हैं.
And oftentimes we read like this that oftentimes we read like this that in the believers are those who call on the name of the Lord.
और बार बार विश्वासियों के बारे में कहा जाता है कि विश्वासी जो जन है वो परमेश्वर के नाम को पुकारते हैं.
Turn to 1 Corinthians chapter 1.
पहला कुरिन्थियों दूसरा पहला अध्याय.
Verse 2.
दूसरा पद, परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो करुंथ में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, और उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं.
यस, द गैदरिंग of God's people is described as those who call on the name of Jesus Christ our Lord.
तो इस तरह जो विश्वासियों की संगति है उनको परमेश्वर के नाम के ऊपर पुकारने वाले या उसे प्रार्थना करने वाले लोग कहा गया है.
So the assembly of God should be a place of prayer.
तो इसलिए कलीसिया परमेश्वर की जो है वो प्रार्थना का घर होनी चाहिए.
What was the secret of the success of the early church?
जो शुरुआत की कलीसिया उनके उनमें क्यों उतनी सफलता है, उसका रहस्य क्या है?
We read in Acts chapter 12.
प्रेरितों के काम 12वें अध्याय में हम पढ़ते हैं.
Verse 5.
और उसके पांचवें पद में.
When Peter was kept in prison.
जो जब पतरस को बंदी खाने में डाला था.
Prayer was made without ceasing of the church unto God for him.
तभी कैसे उसके लिए सतत वो लोग प्रार्थना करते रहते थे.
The early church was a praying church.
जो शुरुआत की कलीसिया थी वो प्रार्थना करने वाली कलीसिया थी.
What were they doing 10 days as they were waiting for the Holy Spirit to come?
जब 10 दिन पवित्र आत्मा आने के पहले क्या कर रहे थे वो?
They all continued in prayer.
वो सब प्रार्थना में रत थे.
So we read in Acts chapter 2 and verse 42, they continued steadfastly in prayer.
प्रेतों के काम 2:42 में कहा है कि वो प्रार्थना में रत थे, लीन थे, मग्न थे.
There is one assembly in Delhi.
दिल्ली में एक ऐसी कलीसिया है.
Every Friday they will send an SMS.
हर शुक्रवार के दिन वो SMS के द्वारा संदेश भेजते हैं.
We are going to have fasting and prayer tonight. What are your prayer requests?
हम आज रात को उपवास करके प्रार्थना करने वाले हैं, तो आपकी प्रार्थना के लिए क्या विनती है?
द हाउस ऑफ गॉड इज टू बी अ हाउस ऑफ प्रेयर.
परमेश्वर की कलीसिया, परमेश्वर का घर, वो प्रार्थना का घर होना चाहिए.
Someone said like this, the early church began in the upper room agonizing.
किसी ने ऐसा कहा है कि पहली कलीसिया जो है वो ऊपरी वाले कमरे में दुख में ऐसे निर्माण हुए.
टुडे द चर्च इज एंडिंग इन द सपर रूम ऑर्गेनाइजिंग.
और आज जो कलीसिया जो है वो भोजन गृह में ईश्वर का मनाए जाते हैं, उसमें रहते हैं.
लॉट ऑफ फीस्टिंग इंस्टेड ऑफ फास्टिंग.
बहुत सारी जो खाना पीना होता है उपवास नहीं होता है.
One day a visitor came to see the metropolitan tabernacle where Spurgeon was speaking.
जब ये भाई स्पर्जन जो भी बात कर रहे थे ऐसे जो महानगर में होने वाले एक तंबू में वो लोग आए.
So he took the person around the building and showed various parts.
और उस व्यक्ति ने उसको आजू बाजू में सब जगह घुमाया ताकि वो जगह को देखे.
Then finally he said, do you want to see the powerhouse of this metropolitan tabernacle?
और बाद में उसने कहा कि इस तंबू का सबसे महत्वपूर्ण जो पावर हाउस है क्या उसको देखना चाहते हो?
The generator room.
कि जिसमें पावर जनरेट की जाती है, उत्पन्न की जाती है.
And he said, yes, I would like to see.
और उसने कहा कि हाँ, मैं जरूर देखना चाहता हूँ.
And he took them to a big room, and when he opened the door, so many were gathered praying.
और वहां जब भी वो बड़े कमरे में उसको गए, वो उसको लेके गए, तो बहुत सारे लोग वहां घुटने टेक के प्रार्थना कर रहे थे.
A praying assembly is a powerful assembly.
जो कलीसिया प्रार्थना करने वाली है वो सामर्थ्यशाली बलवान ऐसी कलीसिया होती है.
We read in the Old Testament, one shall chase a thousand, two put 10,000 to flight.
एक हजार को एक एक व्यक्ति एक हजार को भगाएगा, लेकिन दो व्यक्ति 10,000 को भगाएंगे, ऐसा शास्त्र में कहा है.
We should pray individually, but collective prayer has greater power.
वैयक्तिक प्रार्थना जरूर करनी है, लेकिन सामूहिक प्रार्थना जो है अति महान सामर्थ्यशाली होती है.
Let us spend more time in prayer individually and collectively.
तो आइए हम वैयक्तिक रीति से और सामूहिक रीति से भी प्रार्थना में अधिक लवलीन रहे.
थर्डली,
तीसरी बात,
गॉड्स हाउस इज अ होली हाउस.
परमेश्वर का घर पवित्र है.
यू सी, टू टाइम्स द लॉर्ड क्लेंस द टेम्पल.
दो बार परमेश्वर ने मंदिर को उसका शुद्धिकरण किया.
जॉन चैप्टर 2, इट वॉज इन द बिगिनिंग ऑफ द मिनिस्ट्री.
उसके सेवा के शुरुआत के काल में हम देखते हैं कि यूहन्ना 2 में उसने ये काम किया.
इन द बिगिनिंग इट वॉज ओनली अ हाउस ऑफ मर्चेंडाइज.
शुरुआत में केवल वो लोगों को कुछ धंधा करने की जगह बन गई थी मंदिर.
बट इन द एंड ही हैड टू क्लेंस अगेन एंड इट बिकेम अ डेन ऑफ थीव्स.
और आखिर में उसने जब दूसरी बार उसको शुद्ध किया, तभी हम देखते हैं कि वो मंदिर डाकुओं की खोप बन गया था.
They did two mistakes they made.
दो गलतियां उन्होंने की थी.
In the Gospel of Mark, we read like this: they made the temple a thoroughfare.
मरकुस में हम देखते हैं कि कैसे आम लोगों को आने जाने की जगह उन्होंने मंदिर को बनाया था.
Mark chapter 11 and verse 16.
मरकुस 11:16.
He would not suffer that any man should carry any vessel through the temple.
और मंदिर में से किसी को बर्तन लेकर आने जाने न दिया.
They used the temple as a shortcut.
मंदिर शॉर्टकट के रूप में उसका इस्तेमाल किया जाता था.
We should never treat the house of God in an ordinary way, as it is our house.
जैसे कि हम हमारे घर को गिनते हैं, वैसे सर्वसाधारण घर के जैसा हम कलीसिया को नहीं कभी लेखना चाहिए.
We can do what we want in our house, but in God's house we should do what He wants.
हमारे घरों में हम जो कुछ मनचाहे बातों को करते हैं, लेकिन परमेश्वर के घर में हम मनचाही बातें नहीं, लेकिन उसने चाही हुई बातों को करते हैं.
एंड सेकेंडली, दे मेड द हाउस ऑफ गॉड अ बिजनेस प्लेस.
और दूसरी बात उन्होंने गलती की कि वो परमेश्वर के मंदिर को एक धंधा करने की जगह बना दी.
रिलीजन ऑलवेज हैज बीन गुड बिजनेस.
जो धर्म है वो बहुत बार ऐसा हुआ है कि अच्छा धंधा या व्यापार करने की जगह बन गई है.
इन जेनेसिस चैप्टर 11, लेट अस मेक अस अ सिटी एंड अ टावर.
उत्पत्ति 11 में हम देखते हैं कि वो लोगों ने कहा कि कैसे हम एक नगर बनाए और ऊंचा टावर बनाए.
द टावर स्पीक्स ऑफ रिलीजन, द सिटी स्पीक्स ऑफ कॉमर्स.
और जो टावर है वो धर्म के बारे में बताता है, और नगर है वो व्यापार के बारे में, धंधे के बारे में बताता है.
यू गो टू एनी टेम्पल और इन एनी मस्जिद, इट्स गुड बिजनेस इज़न्ट इट।
बाहर के कितने भी मंदिर और मस्जिद में जाओ कितना व्यवसाय व्यापार धंधा होता है।
When I went to Pushpa in this trip,
जब मैं पुष्कर गया था मेरे सफर के दरमियान,
so I went to see the guards. The guards means where they take the bath and all.
जब भी वो लोग जो यहाँ स्नान करते थे घाट में, वहाँ देखने को मैं गया.
So I sat with the pujari and almost half an hour had a good conversation with him.
और वहाँ के पुजार के साथ में बैठ के उसके साथ में बातें की.
I said, you are making really good business, isn't it?
और मैंने कहा कि तुम बहुत बड़ा अच्छा व्यापार करते हो, धंधा करते हो.
You see, the pilgrims will come and give gifts to this pujari.
और जो लोग आते हैं वो उस पुजारी को बहुत सारा कुछ धन दौलत देते हैं.
They will buy vessels and many other kinds of clothes and they will give it to the pujari for performing the puja.
कोई बर्तन लेते हैं, कपड़ा पैसा देके खरीद के लाते हैं और वो पुजारी को देते हैं.
And then they will sell it back to the shop.
फिर वो पुजारी लोग क्या करेंगे, फिर दुकान में जाके उसको बेचेंगे.
And he was at least a kind-hearted pujari. He agreed to what I said.
और मैंने जो कुछ कहा वो समझ गया और वो थोड़ा सा दिल में उसको दया आई, मतलब उसी प्रकार का था, वो समझ में गया इस बात.
He listened nicely and he took the literature.
और वो सब कुछ सुना शांत रीति से और मेरे जो साहित्य उसको सुसमाचार का दिया, उसने ग्रहण किया, स्वीकार किया.
God's house is a holy house.
परमेश्वर का घर जो है पवित्र घर है.
Let us not make it a business place.
हम उसको व्यवसाय की या धंधा करने की जगह न करें.
People from far away would come to worship God, but here they were looting them.
बहुत दूर से लोग वहाँ आराधना करने के लिए आते थे, लेकिन यहाँ ये लोग उनको लूटते थे.
The third thing about God's house.
तीसरी बात परमेश्वर के घर के बारे में हम देखते हैं.
इट्स अ प्लेस ऑफ हीलिंग.
जो आरोग्य दान प्राप्त करने की जगह, चंगाई प्राप्त करने की जगह.
इन वर्स 14 द ब्लाइंड एंड द लेम केम टू हिम इन द टेम्पल एंड ही हील्ड देम.
तब अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए और उसने उन्हें चंगा किया.
नाउ दिस इज इन कॉन्ट्रास्ट टू डेविड.
ये दाऊद के विरोधाभास में है.
Turn to 2 Samuel chapter 5 and verse 8.
Dusra Samuel 5:8 ko hum dekhe.
When David wanted to capture the city of Zion,
jab hi Sion ke ko prapt karna chahta tha Daud,
the Jebusites were occupying it.
Jebusite log usko unki wo jagah thi.
And the Jebusites, they were so confident that David would not capture their fort, they said like this.
और उनको लगा कि दाऊद उनके जगह कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा और उन्होंने ऐसा कहा उस समय.
In 2 Samuel 5 and verse 6, they said like this, even the blind and lame can ward thee off.
तब राजा ने अपने जनों को साथ लिए हुए यरूशलेम को जाकर यबूशियों पर चढ़ाई की और जो उस देश के निवासी थे उन्होंने ये समझ कर कि दाऊद यहाँ घुस न सकेगा उसे कहा, जब तक तू अंधों और लंगड़ों को दूर न करे तब तक यहाँ घुस न पाएगा.
Yes, even the blind and the lame can fight against you.
जो अंधे हैं, लंगड़े हैं, वो भी उसके साथ लड़ेंगे.
एंड वी रीड इन वर्स 8.
और आठवें पद में हम पढ़ते हैं, जो कोई यबूशियों को मारना चाहे उसे चाहिए कि नाले से होकर चढ़े और अंधे और लंगड़े जिनसे दाऊद मन से घिन करता है उन्हें मारे. इसे यह कहा वह चली, अंधे और लंगड़े भवन में आने न पाएंगे.
Yes, they were hated of David's soul.
दाऊद के द्वारा उसको कैसे द्वेष किया जाता था.
But when the son of David came,
जब ही दाऊद का पुत्र आया तभी,
and David's Lord came,
जब ही दाऊद का प्रभु आया तभी,
the blind and the lame came to him in the temple and he healed them.
अंधे और लंगड़े वहाँ उसके पास आए और उसने उसको चंगाई दी.
The house of God is to be a place of healing.
परमेश्वर का घर चंगाई प्राप्त करने का, आरोग्यदान प्राप्त करने का जगह होती है.
आउट इन द वर्ल्ड देर इज द फ्लेमिंग एरोस ऑफ द विकेड वन.
इस दुनिया में बाहर बहुत सारे शैतान के जो अग्निवत ज्वालावत इस प्रकार के तीर चलते हैं.
इन द हाउस ऑफ गॉड वी कम फॉर हीलिंग एंड रिकुपरेशन.
लेकिन परमेश्वर के मंदिर में कलीसिया में हम इसलिए आते हैं कि हमें चंगाई प्राप्त होए, हम अच्छी तरह बढ़े.
दैट्स वेयर द ब्लाइंड्स आईज आर ओपन.
इसलिए अंधों की आंखें खुली.
Yes, in as we come to God's house, our vision should be sharpened.
परमेश्वर के मंदिर में जब हम आते हैं, हमारी हमारी दृष्टि अधिक तेजवान होनी चाहिए.
When the two disciples broke the bread in Acts chapter in Luke 24, their eyes were opened.
लुका 24 में जब दो शिष्यों ने
when the Lord Jesus broke the bread,
प्रभु यीशु मसीह ने दो शिष्यों के सामने रोटी तोड़ी, तभी उनकी आंखें खुल गई.
So in the house of God, as we break the bread, we should have a fresh glimpse of the glory of Christ.
तो इसी तरह परमेश्वर के मंदिर में अर्थात कलीसिया में जब भी हम रोटी तोड़ते हैं, तभी हमें एक नए इस प्रकार की दृष्टि या विजन प्राप्त होना चाहिए.
Psalm 119 we read, open thou mine eyes that I may behold wondrous things out of thy law.
119वें भजन में हम कहते हैं, देखते हैं कि वो कहता है कि हमारी आंखें खोले ताकि हम आपके वचन के वचन में से अद्भुत बातें देख सके.
सो इन द हाउस ऑफ गॉड द वंडरफुल ट्रूथ्स ऑफ स्क्रिप्चर शुड बी ओपन्ड.
परमेश्वर के मंदिर में घर में परमेश्वर के वचन की जो सच्चाइयां है, अद्भुत सच्चाइयों को प्रकट किया जाए.
एंड इन जॉन चैप्टर 4 वी रीड, लिफ्ट अप योर आईज एंड लुक ऑन द फील्ड, they are white already to harvest.
यूहन्ना 4 में लिखा हुआ है कि सब क्षेत्र के ऊपर देखो, वो पूरी रीति से सफेद हो चुके हैं, कटनी के लिए तैयार है.
And I would encourage the young people here.
तो मैं नौजवानों को यहाँ बैठे हुए उनको उत्तेजन देना चाहता हूँ.
Oh, as I travel in various places in the country.
इस देश के अलग अलग जगह में जब मैं जाता हूँ,
the harvest truly is plenteous.
सचमुच में फसल तैयार हो गई है.
Don't be like the disciples in the Mount of Transfiguration. It's good for us to be here.
वो शिष्यों ने कैसे प्रभु को जब भी परिवर्तन के पर्वत के ऊपर देखा, तभी उन्होंने कहा कि हाँ, ये कितनी अच्छी जगह है हम यहाँ होना.
It's good to be in Borivali.
ये अच्छी जगह है बोरीवली में इस तरह होना.
The city of Bombay.
मुंबई के इस नगर में.
Nice fellowship of God's people.
परमेश्वर के लोगों की बहुत अच्छी संगति.
Good job, good house.
अच्छा काम, अच्छा घर.
Lift up your eyes and look on the field. They are white, all ready to harvest.
खेती के ऊपर देखो, और सब पूरी रीति से फसल तैयार है कटनी के लिए.
Many have never heard the name of Christ.
अनेकों ने प्रभु यीशु मसीह का नाम भी नहीं सुना है.
Some have heard the name of Christ, but never heard the clear gospel of Christ.
अनेकों ने सुना भी है, लेकिन स्पष्ट रीति से सुसमाचार नहीं सुना है.
In the house of God, eyes ought to be opened.
परमेश्वर के घर में हमारी आंखें खुलनी चाहिए.
एंड द लेम ऑट टू बी हील्ड.
और लंगड़ों को चंगाई प्राप्त होनी चाहिए.
देयर वाज अ लेम मैन आउटसाइड द ब्यूटीफुल गेट इन द टेंपल इन एक्ट्स चैप्टर 3.
प्रेरितों के काम 3 अध्याय में हम देखते हैं कि मंदिर के सुंदर कहलाने वाले दरवाजे के बाहर एक लंगड़ा था.
बट ही वेंट इनटू द टेंपल वॉकिंग एंड लीपिंग एंड प्रेजिंग गॉड.
लेकिन वो उसको कैसे चंगाई प्राप्त होने के बाद में अंदर चलते हुए चला मरते हुए प्रभु की स्तुति करते हुए चला गया.
इन द हाउस ऑफ गॉड दोस हुज वॉक इज नॉट राइट दे आर पुट राइट.
परमेश्वर के घर में जिनका चाल चलन अच्छा नहीं होता है, वो उनका चाल चलन अच्छा किया जाता है.
दे शुड बी लीपिंग.
वो तो छलांग मारने वाले होनी चाहिए.
वन ऑफ द क्लीन बर्ड्स दैट शुड बी ईटन इन लिवेटिकस 11 इज दोस बर्ड्स हु हैव लेग्स अबव देयर फीट एबल टू लीप.
वो जो पवित्र पक्षी जिनको खाया जा सकता था, वो अपने पांव के ऊपर छलांग मारने वाले पक्षी थे.
We should not settle in the world. We should be able to rise higher.
तो हम इस दुनिया में ऐसा मूल प्राप्त करके रहने वाले नहीं, लेकिन हम ऊंचा बढ़ने वाले लोग होने चाहिए.
And fifthly,
पांचवी बात हम देखते हैं,
हाउस ऑफ गॉड इज टू बी अ हाउस ऑफ प्रेज।
परमेश्वर का घर स्तुति का घर होना चाहिए।
चिल्ड्रन वर क्राइंग इन द टेम्पल होशाना टू द सन ऑफ डेविड।
लड़कों को मंदिर में दाऊद के संतान को होशाना पुकारते हुए देखा।
एंड द लॉर्ड डिफेंड्स देम बाय साम 8।
और भजन 8 में उनके बारे में प्रभु क्या कहता है,
इन आउट ऑफ द माउथ ऑफ बेब्स एंड सकलिंग्स Thou hast perfected praise।
अब प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ दिखाया कि कैसे बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने अपार स्तुति कराई है।
We should be born again and become like little children।
हम छोटे बच्चे होते हुए नया जन्म प्राप्त करते हैं, होने वाले चाहिए।
Only God's little children can praise Him।
आप परमेश्वर के छोटे ऐसे दूध पीते बच्चे हैं, वो प्रभु की स्तुति कर सकते हैं।
Lord Jesus calls His disciples little children।
प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कहता है कि मेरे छोटे बच्चे।
Beloved, we are God's little children।
हम परमेश्वर के बालक हैं।
And we should be sucklings too।
और हम दूध पीते बच्चे भी होना चाहिए।
Unless we feed on the pure milk of God's word, we cannot get material for praise।
परमेश्वर के वचन के ऊपर हम वचन को हम ग्रहण नहीं करते तब तक हम इस दुनिया में बढ़ते नहीं है।
Out of the mouth of babes and sucklings, thou hast perfected praise।
बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने अपार स्तुति कराई है।
So let us bless the Lord at all times, His praise continually be in our mouth।
तो इस तरह हमारे प्रभु को हम सतत धन्यवाद स्तुति करते रहे और उसकी स्तुति हमारे मनों में हमारे मुंह में हमेशा बनी रहे।
So five things about God's house।
तो इस तरह पांच बातें परमेश्वर के मंदिर के घर के बारे में।
And in 1 Timothy we read the church is the house of God।
तिमोथी के पहले पत्री में लिखा है कि परमेश्वर का घर एक कलीसिया कैसी है।
फर्स्ट ऑफ ऑल माय हाउस।
प्रथम बात यह है इस कलीसिया के बारे में कि यह मेरा घर है। प्रभु कहता है,
लॉर्ड जीसस सेड अपॉन दिस रॉक आई विल बिल्ड माय चर्च।
और प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा कि इस चट्टान के ऊपर मैं मेरा घर बनाऊंगा, कलीसिया बनाऊंगा।
सेकेंडली इट्स अ हाउस ऑफ प्रेयर।
दूसरी बात इस घर के बारे में देते हैं कि वो प्रार्थना का घर है।
Thirdly, it's a holy house।
तीसरी वो पवित्र घर है।
Fourthly, it's a house of healing।
चौथी बात वो आरोग्यदान या चंगाई प्राप्त करने का घर है।
And fifthly, it's a house of praise।
और पांचवी बात जो है वो स्तुति का घर है।
May God bless these thoughts to our hearts।
ये सब विचार हमारे मनों को हमारे हृदयों को प्रभु परमेश्वर आशीषित करें।